रविवार 10 जुलाई दिनभर के सभी सुनने वालों को निखिल रंजन का नमस्कार। भारत प्रशासित कश्मीर की अशांति में मरने वालों की तादाद 18 तक पहुंची, कई इलाकों में कर्फ्यू, इंटरनेट और टेलीफोन सेवाओं पर भी असर।
रियासत में अमन हो और लोगों की जिंदगियां बचाने में हुकूमत जितने भी इकदाम उठा रही है वो कामयाब हो तो हमें उनका भी साथ चाहिए।
जाकिर नायक के पीस टीवी पर बांग्लादेश में प्रतिबंध, नायक कल लौट सकते हैं भारत। दक्षिण अफ्रीका के बाद तंजानिया पहुंचने पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ भव्य स्वागत। और संडे दिनभर में आज मुलाकात भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश से।
जितना भी पॉलिश होना है, जो छोटा वाला डिटेल के ऊपर काम करना है, अभी हम लोग वही करेंगे बेंगलोर में।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। भारत प्रशासित कश्मीर में चरमपंथी बुरहान वानी की मौत के बाद शुरू हुए हिंसक प्रदर्शन जारी हैं। जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू लगाया गया है और मोबाइल और इंटरनेट सेवा निलंबित हैं। इसके बावजूद कई इलाकों में हिंसा की खबरें हैं। शुक्रवार से अब तक प्रदर्शन में 18 लोगों की मौत हो गई है और करीब 200 लोग घायल बताए जा रहे हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि अनंतनाग जिले के संगम में भीड़ ने एक बंकर वाहन को झेलम नदी में धकेल दिया है, जिससे उसमें सवार पुलिस चालक फिरोज अहमद की मौत हो गई है। अमरीका में पुलिस फायरिंग में काले लोगों की मौत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे। सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा समेत कई जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं। लुइसियाना राज्य में पुलिस ने ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान से जुड़े एक प्रमुख कार्यकर्ता डी रे मैक्सॉन को कई लोगों के साथ हिरासत में लिया है। इन्हें बैटन रूज शहर में पुलिस की गोली से एक काले शख्स की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। डेलस में पिछले हफ्ते एक ऐसी ही रैली में फायरिंग में 5 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस और काले लोगों के बीच स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इन गिरफ्तारियों पर अमरीकी पुलिस फाउंडेशन के प्रमुख जिम बुयरमैन ने बीबीसी को ये बताया।
It's very unfortunate. These people appeared to be trying to peacefully protest.
ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, ये लोग सड़क के किनारे चल रहे थे। सार्वजनिक व्यवस्था को देखते हुए मैं समझता हूँ कि ये लोग एक व्यस्त सड़क पर चल रहे थे जहाँ कोई पगडंडी नहीं थी, और जिस अधिकारी ने उन्हें गिरफ्तार किया उसका व्यवहार काफ़ी रूखा था। अचानक आकर पुलिस अधिकारी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, ये तरीका थोड़ा अलग हो सकता था। ये थे जिम बुयरमैन के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। बांग्लादेश सरकार ने विवादास्पद इस्लामिक उपदेशक जाकिर नायक के टीवी चैनल पीस टीवी पर रोक लगा दी है। ढाका में होली आर्टिसन बेकरी पर हमले को अंजाम देने वाले हमलावरों के जाकिर नायक से प्रेरित होने की खबरों के बाद ये कार्रवाई की गई है। वहीं बांग्लादेश सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों से किसी भी छात्र के क्लास से 10 दिन से ज्यादा अनुपस्थित रहने पर अधिकारियों को खबर देने को भी कहा है। भारत में भी केंद्र सरकार ने राज्यों से उन चैनलों को नहीं दिखाए जाने के लिए कहा है जिन्हें भारत में मंजूरी नहीं दी गई है। दक्षिण सूडान के उपराष्ट्रपति रेक माचर ने सैनिक प्रवक्ता ने कहा है कि उनके और राष्ट्रपति साल्वा कीर के समर्थक सैनिकों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो गई है। कर्नल विलियम गडजियात ने बीबीसी को बताया कि 3 दिन की लड़ाई में सैकड़ों सैनिकों की मौत हो चुकी है, हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। संयुक्त राष्ट्र ने शांति समझौते के प्रति गंभीर नहीं होने के लिए दोनों पक्षों की निंदा की है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं निखिल रंजन। जैसा कि आपने समाचारों में सुना कि कश्मीर में शुक्रवार रात से अशांति की जो शुरुआत हुई है वो अभी रुकी नहीं है। अब तक 18 लोगों की मौत हुई है और सुरक्षा बलों समेत बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके अलावा फोन और इंटरनेट की नियमित सेवा भी रोकी गई है। प्रदर्शनकारी सड़कों पर निकलकर भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं और पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। भारत सरकार ने आज सुरक्षा बलों की और टुकड़ियां कश्मीर भेजी हैं, जिन्हें शहरों के साथ साथ गांवों में भी तैनात किया गया है। बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर से सुनिए वहां का पूरा हाल।
कठिन कर्फ्यू, बंद और तनाव के कारण आज दूसरे दिन भी घाटी में आम जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। अमरनाथ यात्रा को बहाल करने का प्रयास किया गया, लेकिन दक्षिणी कश्मीर में हिंसक प्रदर्शनों के कारण यात्रा अभी भी स्थगित है। आज भी दक्षिणी कश्मीर के कई क्षेत्रों में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके जवाब में पुलिस और सुरक्षा बलों ने फायरिंग की। इन घटनाओं में एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। मरने वालों की संख्या पहले ही 18 है और 96 सुरक्षा कर्मियों समेत 250 लोग घायल हैं। भारत विरोधी आंदोलन पर काबू पाने के लिए जहां भारत सरकार ने आतंकवाद के समर्थन को सख्ती से निमटने की बात की है, वहीं भाजपा के समर्थन वाली पीडीपी सरकार ने आज शांति बहाली के लिए अलगाववादियों से सहयोग मांगा। कैबिनेट की एक हंगामी मीटिंग के बाद सरकार के प्रवक्ता नईम अख्तर ने बताया कि सुरक्षा कर्मियों को हिंसक प्रदर्शनकारियों ने उकसाया, जिसकी प्रतिक्रिया में भीड़ पर फायरिंग की गई।
हुर्रियत के लीडर हैं, हम उनसे भी अपील करते हैं कि वो अगर चाहते हैं कि रियासत में अमन हो और लोगों की जिंदगियां बचाने में हुकूमत जितने भी इकदाम उठा रही है वो कामयाब हो, तो हमें उनका भी साथ चाहिए।
नईम अख्तर ने बताया कि भीड़ पर फायरिंग की सभी घटनाओं की तह तक जाकर इन हालात का विश्लेषण किया जाएगा जिनमें लोगों की जाने गई हैं। इससे पहले राज्य के इंटेलिजेंस चीफ SM सहाय ने भी लोगों से अपील की कि वो बच्चों को भारत विरोधी जुलूसों में जाने से रोकें। पुलिस के मुताबिक आज अनंतनाग जिले में हिंसक भीड़ ने पुलिस की एक गाड़ी को दरिया में फेंक दिया, जिसके कारण एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। जुमे की शाम को भी पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने कई पुलिस थानों पर हमला किया था, जिसके दौरान 3 पुलिसकर्मी लापता हो गए हैं। गौरतलब है कि भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने आज दिल्ली में बताया कि पाकिस्तान बुरहान वानी के समर्थकों को शह दे रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है और इस मामले पर किसी बातचीत या बहस की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बीच सईद अली गिलानी, शब्बीर शाह और मीरवाइज समेत दर्जनों अलगाववादी नेताओं को घरों में नजरबंद किया गया है। लश्कर ए तैयबा के चीफ कमांडर महमूद शाह ने एक वक्तव्य में लोगों से कहा है कि वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सभी नेताओं की अपील के मुताबिक भारत विरोधी आंदोलन को जारी रखें। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक गुट के नेता मीरवाइज उमर फारूक ने जहां प्रशासन की इस बात पर आलोचना की है कि सुरक्षा कर्मियों को खुली छूट देकर वो लोगों को उकसा रही है, वहीं उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि वो प्रदर्शनों के दौरान हिंसा न करें।
ताकत से, तशद्दुद से, मारधाड़ से न तो ये मसला हल होगा, जितना ये दबाएंगे इस मसले को उतना ये मसला उभर के सामने आएगा। तो बेहतरीन यही इसका हल ये है कि कश्मीर की असल हकीकत को तस्लीम किया जाए और इस मसले को हल करने के लिए जो है इकदाम उठाए जाएं, पाकिस्तान के साथ बात हो, कश्मीरियों के साथ बात हो और इस मसले के सियासी हल के लिए कोशिशें की जाए।
गौरतलब है 21 वर्षीय बुरहान वानी को जुमे की शाम पुलिस ने एक मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। इनके जनाजे में हजारों लोग जमा हो गए और जनाजे के लिए जाते हुए लोगों और सुरक्षा बलों के बीच कई जगहों पर मुठभेड़ हुई। बुरहान वानी 2010 में 15 वर्ष की उम्र में रोपोश हो गए और बाद में फेसबुक पर हथियार थामे अपनी और अपने साथियों की तस्वीरें पोस्ट करके भारत विरोधी भावनाओं के प्रतीक बन गए। भारतीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कश्मीर की स्थिति के बारे में आश्चर्य जताया कि कोई भारतीय नागरिक बुरहान वानी का समर्थक कैसे हो सकता है, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि कश्मीरियों को दिल्ली से बरसों तक राजनीतिक आजादी, न्याय और बराबर बर्ताव की जो शिकायतें हैं वो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं और गुस्से का ये लावा जब फटता है तो पूरा कश्मीर भारत विरोधी आंदोलन की घाटी बन जाता है। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
कश्मीर में अशांति जारी है। इधर ढाका में चरमपंथी हमले के बाद सुर्खियों में आए इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के टेलीविजन चैनल पीस टीवी पर बांग्लादेश में प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी चैनल के जरिए नायक का भाषण दुनिया के कई देशों में प्रसारित होता है। इस बारे में और जानकारी के लिए मैंने ढाका में स्थानीय पत्रकार सैफुल हुदा से बात की।
कल भारत में पीस टीवी और डॉक्टर नायक के बारे में जो डिसीशन हुआ उसके बाद कल ही बांग्लादेश केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के लीडर्स मीडिया को ये बोले हैं कि बांग्लादेश सरकार भी अगर पीस टीवी बंद करना चाहती है या ऐसे कोई डिसीजन लेना चाहती है तो वो लोग इस डिसीजन को जरूर मानेंगे। तो आज मंत्रिसभा की एक आईन श्रृंखला कमेटी जिसके हेड हैं इंडस्ट्रीज मिनिस्टर अमीर हसन आमू, वो लोग एक डिसीजन लिए कि पीस टीवी बैन कर दिया जाएगा और अब वो लोग केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन को एक खत जरूर देंगे। इससे पहले ही केबल ऑपरेटर्स बहुत कोई अपने आप खुद डिसीजन लेके पीस टीवी बंद कर चुके हैं।
सरकार की तरफ से अभी कोई इस तरह का आदेश नहीं जारी हुआ है।
जी हाँ, डिसीजन हो गया है लेकिन आदेश बस पहुंचते ही होगा।
वहाँ बांग्लादेश में पीस टीवी कितने लोग देखते होंगे? जाकिर नाइक ने दावा किया था कि बहुत बड़ी तादाद है बांग्लादेश में उनके टीवी पर भाषणों को देखने वालों की।
कोई अच्छी तादाद है लेकिन ऐसा नहीं कि ये बंद हो जाने से कोई फर्क पड़ेगा।
जाकिर नाइक के फॉलोअर भी क्या बांग्लादेश में बहुत सारे लोग हैं?
वैसे जैसे इंडिया और दूसरे सब जगह में वो एक ऑफिशियल फॉर्म में है, यहाँ ऐसे कोई एसोसिएशन या कोई फॉर्म में कभी यहाँ डॉक्टर नायक का कोई भी मीटिंग या खुतबा या बयान कहीं कभी नहीं हुआ। जो हमने सुना है वो टीवी में दिखाई देते हैं।
ये थे सैफुल हुदा, ढाका में स्थानीय पत्रकार। ढाका के हमलावरों में एक जाकिर नायक को फॉलो करता था और भारत में इस बात की जांच हो रही है कि कहीं नायक के भाषणों से युवाओं को चरमपंथ की ओर जाने की प्रेरणा तो नहीं मिलती। जाकिर नायक फिलहाल भारत से बाहर हैं, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो 11 जुलाई यानी कल भारत लौटेंगे।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल्ड।
बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिनभर निखिल रंजन के साथ। और आपको जैसा कि पहले भी हम खबरों में बता चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 देशों के अफ्रीका दौरे में रविवार को तंजानिया पहुंचे। दार ए सलाम में पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। पीएम ने तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन पोम्पे जोसेफ मागोफुली से मुलाकात की। पीएम के अफ्रीका दौरे का मकसद इस महाद्वीप के साथ संबंधों और खासकर आर्थिक रिश्तों को विस्तार देना है। दोनों देशों ने 5 अहम समझौतों पर दस्तखत किए हैं। पूरा हाल सुनिए अमर शर्मा से।
तंजानिया पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ, वो भी पूर्वी अफ्रीकी अंदाज में। दार एस सलाम के स्टेट हाउस में मोदी ने तंजानियाई राष्ट्रपति के साथ लगभग 1 मिनट तक ड्रम बजाया। औपचारिक स्वागत के बाद मोदी और मागोफुली ने बराक ओबामा ड्राइव पर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। यहां मौजूद लोगों ने भारत और तंजानिया के झंडे लहराकर पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम ने भी उनके पास जाकर उनसे हाथ मिलाया। इससे पहले हवाई अड्डे पर तंजानिया के प्रधानमंत्री कासिम मजालिवा और विदेश मंत्री बर्नार्ड मेम्बे ने मोदी की अगवानी की। स्टेट हाउस में प्रधानमंत्री की वार्ताएं हुई। इसके बाद दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन पोम्बे जोसेफ मागोफुली ने दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जताई। पीएम मोदी की मौजूदगी में भारत और तंजानिया के बीच 5 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश राष्ट्र निर्माण, विकास और औद्योगिकीकरण की दिशा में काम करेंगे। मोदी ने कहा कि भारत ने तंजानिया में करीब $3 अरब का निवेश किया है।
इंडिया इज ऑलरेडी ए सब्सटेंशियल इकोनॉमिक पार्टनर ऑफ तंजानिया।
भारत तंजानिया का पहले से ही एक बड़ा आर्थिक साझेदार है। हमारे सभी व्यापारिक रिश्तों में और तेजी आएगी। दोनों देशों के बीच वास्तविक व्यापार करीब $3 अरब के बराबर है। तंजानिया में करीब $3 अरब मूल्य का भारतीय निवेश हो चुका है और भारतीय व्यापार तंजानिया में लगातार बढ़ रहा है। तंजानिया की विकास संबंधी प्राथमिकताओं पर एक विश्वसनीय साथी के रूप में खरे उतरने को हम अपना विशेषाधिकार समझते हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि तंजानिया भारत का बेहद अहम सहयोगी है। मोदी ने कहा कि हम आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के खिलाफ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक रूप से काम करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तंजानिया को आश्वस्त किया है कि भारत तंजानिया के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में विशेष पहल करेगा। भारत ने जांजीवर में जल आपूर्ति परियोजना के लिए तंजानिया को $9,20,00,000 की सहायता की पेशकश की है। पीएम ने कहा है कि वे तंजानिया के 17 शहरों में पानी की परियोजनाओं पर भी काम कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि वे तंजानिया सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राथमिकता को पूरा करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोलर ममाज से भी मुलाकात की। सोलर ममाज अफ्रीका की ग्रामीण महिला और इंजीनियरों का एक समूह है, जिसे भारत सरकार के सहयोग वाले कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया गया है, ताकि वे सौर लैंप और सौर प्रकाश करने वाली अन्य चीजों का उत्पादन, इस्तेमाल, मरम्मत और रखरखाव अपने गांव में कर सकें। और कॉलेज से स्नातक की डिग्री दी गई है। मोदी ने कहा कि वे तंजानिया के राष्ट्रपति मागोफुली के जल्द से जल्द भारत दौरे को लेकर उत्सुक हैं।
ये थे अमर शर्मा और सुना रहे थे तंजानिया में प्रधानमंत्री के दौरे की दास्तान। और अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां बाढ़ से अब तक 15 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग लापता हो गए हैं। प्रदेश में अभी भी कई जगहों पर बाढ़ के हालात हैं। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के मालवा क्षेत्र में भारी बारिश की चेतावनी दी है। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जब तक स्थिति पूरी तरह सुधर नहीं जाती, तब तक राहत शिविर जारी रहेंगे। भोपाल से शुरे नियाजी की रिपोर्ट सुनिए।
मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में अब बाढ़ का पानी कम होना शुरू हो गया है, लेकिन कई स्थानों पर अभी भी स्थिति खराब बनी हुई है। विदिशा में बेतवा में बाढ़ के चलते 1300 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज फिर एक बैठक बुलाकर स्थिति का जायजा लिया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मुख्यमंत्री से प्रदेश के हालात की जानकारी ली। शिवराज सिंह चौहान ने बताया,
जब तक घरों की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती कच्चे घरों की, तब तक जहाँ जरूरत है अस्थायी राहत के शिविर हम लगाएंगे। सर्वे के निर्देश हमने दिए ताकि क्षति का आकलन किया जा सके और विशेषकर हमारे गरीब बहनों और भाइयों को उस आकलन के हिसाब से राहत दी जा सके, सहायता दी जा सके। एक बड़ा खतरा है बाढ़ का पानी उतरने के बाद बीमारियां फैलने का, उसलिए स्वास्थ्य विभाग को ये जवाबदारी सौंपी गई है, नगर निगम से मिलके, स्थानीय प्रशासन से मिलके वो युद्ध स्तर पर पीने का पानी शुद्ध रहे उसकी व्यवस्था करें। सब जगह इस मौसम में फैलने वाली बीमारियां जो डायरिया, उल्टी, दस्त, आंत्रशोथ जैसी बीमारियां होती है उनसे निपटने के आवश्यक उपाय करें।
भोपाल की निचली बस्तियों में पानी कम होना शुरू हो गया है, लेकिन झुग्गी क्षेत्र में रहने वाले ऐसे लोगों की तादाद बहुत है जिन्होंने इस बारिश में अपना सब कुछ गंवा दिया है। कुछ लोगों की झुग्गियां तक बह गई हैं। उन्हें नहीं मालूम कि अब उनकी जिंदगी कैसे चलेगी।
सामान भी है हमारा और गोदरेज पूरी बह गई, पूरा बिस्तर गोरिया भरा रहा, पूरे गेहूं भी भरा रहा, पूरे बेगा सब सब सारा सामान बेगा हमारा, और घर भी टूट गया।
हमारी झुग्गी बह गई सर, 12 बजे रात से हम लोग परेशान है, पूरा सामान बह गया, हम दोनों माँ बेटे हैं, पूरा सामान चला गया।
वहीं इन हालात के लिए कुछ लोग नगर निगम को जिम्मेदार मान रहे हैं। उनका कहना है कि नगर निगम अगर सही तरीके से काम करता तो ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होती।
नगर निगम भी जब सफाई अभियान चलाती है तो ये पूरा कचरा उठाकर ये रोड के किनारे यहाँ रख देती है, जिसके कारण और पूरी घर के अंदर बस्तियों में पानी भरा गया, पूरा घर का खाने पीने से लेकर सोने ओढ़ने का सारा डॉबर का नुकसान हो गया, लगभग 100-150 घरों के अंदर पानी भरा चुका और अभी तक नगर निगम की तरफ से कोई सहायता नहीं आई है। लगातार कमिश्नर को भी फोन करा, कोई नहीं आ रहा, हर साल हम लोग का नुकसान होता है।
मध्य प्रदेश में मध्य क्षेत्र के बाद अब राज्य के मालवा और निमाड़ क्षेत्र में भारी बारिश हो रही है। उज्जैन जिले में 9 इंच बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश में सामान्य से 65% ज्यादा बारिश हो चुकी है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अभी यहां का सिस्टम कमजोर नहीं हुआ है, जिसके चलते 2 से 3 दिनों तक लगातार भारी बारिश होगी। 3 से 4 दिन बाद ही लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। शुरहन्याजी, BBC न्यूज भोपाल।
और आइए अब रुख करते हैं कुछ खेल की खबरों का। खेल की खबरों के लिए आज का दिन काफी अहम है, क्योंकि एक तरफ विंबलडन में पुरुषों का फाइनल मुकाबला है तो दूसरी तरफ यूरो कप का भी फाइनल होना है। आदेश कुमार गुप्ता आ गए हैं ताजा जानकारी लेकर। आदेश जी बताइए क्या हो सकता है आज?
जी देखिए, हाँ बिल्कुल, सुपर संडे, लेकिन सबसे पहले चर्चा विंबलडन की, जहाँ वो अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है और पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में दूसरी वरीयता हासिल ब्रिटेन के एंडी मरे और छठी वरीयता हासिल कनाडा के मिलोस रॉनिक आमने सामने होंगे। एंडी मरे इससे पहले साल 2013 में भी विंबलडन जीत चुके हैं और आज अपने घरेलू समर्थकों के सामने खेलते हुए उनका जोश दोगुना होगा। वैसे एंडी मरे इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीत चुके हैं, तो इसी साल वे फ्रेंच ओपन के फाइनल में भी पहुंचे, जहां उन्हें सर्बिया के नोवाक जोकोविच से हार का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ मिलोस रॉनिक तो खुद पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे हैं, हालांकि वो इसी साल ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में भी पहुंचे थे, यानी तब उन्होंने संकेत दे दिए थे कि अब उन्हें हल्के में ना लिया जाए। लेकिन वक्त की बात है, कल फेडरर बाहर हुए, लेकिन फेडरर का दौर फिर कभी आएगा, किस रूप में? जैसे मार्टिना नवरातिलोवा, क्योंकि लेडीज डबल्स के फाइनल में आज अपने समय की सबसे दमदार खिलाड़ी रही अमेरिका की मार्टिना नवरातिलोवा। अपनी जोड़ीदार ट्यूनिशिया की सेलिना सफार के साथ मिलकर अमेरिका के ही लिंडसे डेवनपोर्ट और मैनी जॉय फर्नांडिस का सामना करेंगी, यानी एक तरह से ये अनुभवी खिलाड़ियों की कैटेगरी होती है। उधर यूरो का फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल आज पुर्तगाल और फ्रांस के बीच खेला जाएगा। पुर्तगाल की निगाहें रोनाल्डो और फ्रांस की निगाहें ग्रिजमैन पर लगी रहेंगी, जिन्होंने पिछले मुकाबले में 2 शानदार गोल किए थे और जर्मनी को बाहर का रास्ता दिखाया था। ये एक बड़ा उलटफेर माना गया, क्योंकि जर्मनी कभी भी किसी टूर्नामेंट में फ्रांस के हाथों कम से कम 2-0 से नहीं आ रहा था। वैसे पुर्तगाल के पास नानी और रोनाल्डो सांचेज है, तो फ्रांस के पास भी दिमित्री पायत और पाल पोग्बा जैसे खिलाड़ी हैं। मुकाबला बेहद जानदार और शानदार होना चाहिए। वहीं अमरीकी ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के अजय जयराम सेमीफाइनल में जापान के केंता त्यूसु ने यामा से कल 21-10, 21-14 से हारकर बाहर हो गए। उधर भारतीय क्रिकेट टीम एक अभ्यास मैच खेल रही है वेस्ट इंडीज़ में, जहां कल स्टम्प के समय उसने पहले दिन 6 विकेट खोकर 258 रन बना लिए थे। केएल राहुल ने 50 रनों का योगदान दिया। शिखर धवन ने भी रिटायर आउट होने से पहले 51 रन बनाए, लेकिन कप्तान विराट कोहली केवल 14 रन बना सके। रोहित शर्मा ने नाबाद 54 रन बनाए। वैसे कोई बड़ी बात नहीं, अभ्यास है, लेकिन काफ़ी दमदार खेल दिखाया फिर भी भारतीय टीम।
चलिए अगले कार्यक्रम में फिर चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त खेल समाचारों के लिए। और आज संडे है तो संडे दिन भर में आपकी एक खास मुलाकात होती है और आज इस बार का जो हमारा मेहमान है वो भी खेलों के मैदान से ही है। मिलिए पुरुष भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश से। भारत की हॉकी टीम ने पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी में रजत पदक जीता है, जिसकी वजह से भारतीय पुरुष हॉकी टीम विश्व रैंकिंग में नंबर 5 पर आ गई है और अब ओलंपिक जाने के लिए तैयार है। उनसे एक लंबी बातचीत की है हमारी संवाददाता सुमिरन प्रीत कौर ने।
आज मुलाकात भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश से। भारतीय हॉकी टीम चैंपियंस ट्रॉफी में सिल्वर मेडल जीतकर सिक्स नेशन टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर इस हफ्ते भारत वापस पहुंची है। अब वो तैयारी कर रही है 5 अगस्त से शुरू होने वाले ओलंपिक्स की। अप्रैल में इस साल सुल्तान अजलान शाह कप में भारत ने जीता सिल्वर मेडल, फाइनल तक पहुंची भारत। उसके बाद जून में हुए चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पहली बार जीता सिल्वर मेडल, ब्रिटेन को हरा के वो फाइनल्स में पहुंची और उसे मिला रजत पदक। उसके बाद भाग लिया उन्होंने सिक्स नेशन टूर्नामेंट में। कुछ इन्हीं उपलब्धियों की वजह से भारत अब 5वें पायदान पर है। मैं आपके साथ हूँ सुमिरन। आइए बात करते हैं केरला के पीआर श्रीजेश से, जो बताएंगे कि कैसी चल रही है भारत की तैयारी ओलंपिक्स के लिए। पीआर श्रीजेश भारत के गोलकीपर हैं, जिन्होंने कप्तानी की चैंपियंस ट्रॉफी में। श्रीजेश, ये बताइए कि ओलंपिक्स के लिए बहुत कम दिन रह गए हैं, तैयारी कैसी चल रही है?
ओलंपिक्स के लिए तो अभी तो 30 दिन भी नहीं है हमारे पास, और हमारा तो ऑलमोस्ट जो मेन प्रिपरेशन था वो हो चुका है। अभी जितना भी पॉलिश होना है, जो छोटा वाला डिटेल के ऊपर काम करना है, अभी हम लोग वही करेंगे बेंगलोर में। एक दो हफ्ता है हमारे पास रियो जाने से पहले, और हम लोग रियो के पहले मैड्रिड जा रहे हैं, वहाँ पे एक्लेमिटेशन और 2 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए भी। बट अभी तो माइंडसेट एक ही है कि अच्छा प्रदर्शन करना और रियो में फर्स्ट क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है।
और आपके पूल में कौन कौन है और किससे खतरा है?
हम लोग तो सेकंड पूल में अभी, और हमारे साथ जर्मनी है, हॉलैंड है, अर्जेंटीना, आयरलैंड और कनाडा है। और मेरे हिसाब से कभी ओलंपिक्स में कई टीम ऐसे नहीं है जो वीक है, हर एक टीम तो टफ रहेगा। हम लोग हर एक मैच जीतना पड़ेगा, तभी तो क्वार्टर फाइनल्स में एक वीक टीम मिलेगा। और सेकेंडरी टीम क्वार्टर फाइनल्स बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ से हम लोग को सेमीफाइनल्स के लिए एंट्री मिलता है।
जो करंट इंडियन मेंस हॉकी टीम है, उसकी वीकनेस क्या है, उसे कहाँ कहाँ काम करने की जरूरत है?
वो तो एक कंसिस्टेंसी नहीं है, कई टाइम पे हम लोग को पेनाल्टी कॉर्नर गोल स्कोर नहीं होता है, कई टाइम पे हमारा पेनाल्टी कॉर्नर हर एक गोल होता है, कभी कभी हमारा डिफेंस में भी बहुत लैप्स होता है, हम लोग इसी गोल कंसीडर करते हैं। और सेकेंडरी चीज, हमारा स्कोरिंग थोड़ा और इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि कई मैचेस था जैसे हम लोग एटलीस्ट 1 गोल स्कोर करने से हमारा टूर्नामेंट का ही पूरा चेहरा बदल जाता था, बट हुआ नहीं।
और टीम की स्ट्रेंथ क्या है?
हमारा स्ट्रेंथ फर्स्ट ऑफ ऑल एक यंगस्टर्स प्लस एक्सपीरियंस मिक्सअप है हमारा टीम। मतलब पिछले 3 साल से हमारा टीम एक ही साथ काम कर रहे, तो टीम का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा रहा है अभी। और एक जेलिंग अप, कैसे टीम बॉन्डिंग, हम लोग बहुत अच्छा शेप में हो, तो मेरे हिसाब से वो हमारे सबसे अच्छा स्ट्रेंथ हो सकता है।
श्रीजेश, भारतीय टीम के जो चीफ कोच हैं रोलैंड ऑल्टमैन और भारतीय टीम के जो कप्तान है सरदार सिंह, उन दोनों के बारे में कुछ बताइए।
कोच इम्पोर्टेंट है हमेशा हॉकी में, क्योंकि कोच का जो एक्सपीरियंस और नॉलेज और उसका जो सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेना, वो बहुत अहमियत रहता है। और मेरे हिसाब से रोलैंड एक्सपीरियंस कोच है और बहुत अच्छा कोच भी है, 3-4 साल से इंडियन टीम के साथ हो, तो उसका जो हमारे साथ जो बॉन्डिंग है वो भी बहुत अच्छा है, और इसीलिए तो वो चीफ कोच है हमारा। सेकेंडरी सरदारा, हॉकी में कैप्टन एक मेंबर ऑफ प्लेयर नॉर्मली, जिसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग से दिया जाएगा, बट ऑन द फील्ड हम 11 प्लेयर जो खेलते हैं वो सबका इम्पोर्टेंस एक ही जैसा है। सरदारा एक चीज से, सरदारा तो बहुत कूल है, उसका नेचुरल तो थोड़ा कूल माइंड में रहो और प्लेयर्स को अच्छी तरह से लीड करो।
इस हफ्ते आप चैंपियंस ट्रॉफी और सिक्स नेशन टूर्नामेंट के बाद भारत वापस लौटे हैं, और साथ ही अब ओवरऑल अगर वर्ल्ड रैंकिंग देखी जाए तो भारत 5वें पायदान पर है, ये तो गुड न्यूज है।
जब मैंने शुरू किया था हॉकी तब तो इंडिया 11वां पोजीशन में था, 11th रैंकिंग में था, अभी हम लोग 5th तक पहुंच गया, बहुत अच्छा रहा था। जो हमारा जो चैंपियंस ट्रॉफी के प्रदर्शन की वजह से हम लोग को ज्यादा पॉइंट्स भी मिला है, हम लोग 2 टीमों के आगे आप पहुंच गया अभी। और आप देखे जाएगा तो सिक्स नेशन टूर्नामेंट एक तरीके से एक ट्रायल सेलेक्शन ट्रायल्स था हमारे लिए, क्योंकि रियो ओलंपिक्स के लिए बहुत प्लेयर्स को ट्रायल्स देना था कोच को भी, और हर एक मैचेस में हम लोग नया नया टीम को उतार रहा था ग्राउंड में, तो उसी का भी फर्क था टीम के अंदर। वर्ल्ड कप टॉप फाइव में आना मतलब बहुत मुश्किल का काम है, आपको सबको पता है ये चीज। एंड अभी हमारा हम लोग रहा है पहले वर्ल्ड नंबर वन भी रहा, बट अभी आजकल का लेटेस्ट हॉकी में हम लोग को वर्ल्ड टॉप थ्री में आने के लिए बहुत कोशिश करना पड़ेगा। तो हमारे लिए एक मौका अभी मिला है, पांच तक पहुंच के हम लोग अभी ओलंपिक्स तक हम लोग को और अच्छा प्रदर्शन देना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से टॉप थ्री आना हमारे लिए तो बहुत नजदीक है।
स्पोर्ट्स की बात करें अगर भारत में फिल्मों के नजरिए से, तो कितनी फिल्में क्रिकेट पर बनी हैं? जवाब है बहुत सारी। अव्वल नंबर लगान, पटियाला हाउस, इकबाल, अजहर, दिल बोले, हड़प्पा और भी बहुत सारी फिल्में हैं।
बार बार हाँ, बोलो यार हाँ, मुझे दलिशकारा, तो मैं भी तेरा जान से प्यारा, आशाएं दिले जिंदगी।
पर हॉकी पर कितनी फिल्में बनी हैं? शायद एक या दो फिल्में। फिल्में समाज का आईना होती हैं, इसीलिए शायद इतनी सारी फिल्में क्रिकेट पर और कम फिल्में हॉकी पर। पर क्या सचमुच फिल्में वही दिखाती हैं जो ऑडियंस देखना चाहती है? मतलब क्या सचमुच लोगों का इंटरेस्ट कम है हॉकी के लिए? श्रीजेश, आप हॉकी के लिए खेलते हैं, लोगों से मिलते हैं, आपको क्या लगता है कि सच में लोगों का इंटरेस्ट हॉकी के लिए थोड़ा सा कहीं पीछे है अगर दूसरे स्पोर्ट्स से कंपेयर करें तो?
लोग अभी भी हॉकी चाहता है ऐसा नहीं है, बट वो लोगों को हॉकी देखने के लिए मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए तो लोग थोड़ा मुश्किल हो रहा है वो लोगों के लिए हॉकी फॉलो करने में। और हॉकी में जब लीग आया, हम ही लोग तो पहले बार प्रीमियर हॉकी लीग इंट्रोड्यूस किया था, और हमारा अभी हॉकी इंडिया लीग भी चल रहा है, तो देखे जाएगा तो बहुत लोग है अभी भी हॉकी को चाहता है और हॉकी को सपोर्ट करना चाहता है। और जितना आप मैचेस जीतोगे, जितना आप मेडल लेके आओगे कंट्री में, तो मेरे हिसाब से बहुत लोग है सपोर्ट करने के लिए भी आगे भी आता है। अभी देख लो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी हम सब लोग हॉकी के लिए तो बहुत सपोर्ट कर रहा था, बहुत मैसेज भेज रहा था, हमारे लिए विशेष भेज रहा था, तो ये सब चीज हमारे लिए एक मोटिवेशन है। जब तक हम लोग प्रदर्शन करते रहेगा और हॉकी आगे आते रहेगा, और वही तो हमारा उम्मीद है अभी।
जाते जाते क्या आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, और आप हॉकी के फ्यूचर को कैसे देखते हैं?
फ्यूचर हॉकी हम ही लोग बनाता है, हम हॉकी खुद ही को अभी फ्यूचर नहीं बनाते हैं। हम लोग को अच्छा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हम लोग को अच्छा ग्राउंड के ऊपर प्रदर्शन करना पड़ेगा, हम लोग को मेडल जीतना पड़ेगा, तभी तो हॉकी का भी फ्यूचर है। जब तक ज्यादा बच्चा लोग नहीं, तो जो हॉकी लवर्स है, हॉकी खेलना चाहते हैं, वो लोग आगे नहीं आएगा, तब तक तो हम लोग को हॉकी कहीं भी नहीं लेके जा सकते।
शुक्रिया श्रीजेश हमसे बात करने के लिए। बात हो रही थी इंडियन मेंस हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश से, जो बता रहे थे कि क्या क्या तैयारी चल रही है ओलंपिक्स के लिए और वो कौन सी टीम्स हैं जो भारत के लिए बन सकती हैं खतरा।
भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर पीआरसीजे से बात कर रही थी सुमिरनप्रीत कौर। और एक अमरीकी कलाकार हैं, उनका नाम है स्पेंसर ट्यूनिक। वो बड़ी अनोखी तरह की कला है उनकी, और अभी हाल ही में इंग्लैंड के किंगस्टन में उनकी एक प्रदर्शनी लगी, तो उसके लिए हज़ारों लोगों ने अपने कपड़े उतार कर और ख़ुद को नीले रंग में रंग कर उनके इंस्टॉलेशन के हिसाब से अपने को वहाँ पेश किया। और ये तस्वीर देख करके आपको ऐसा लगेगा जैसे कि समंदर की लहरें चली आ रही हों शहर में, और इस तरह की कई तस्वीरें इस प्रदर्शनी की आप देख सकते हैं bbchindi.com पर। आइए कभी। और अब कार्यक्रम के आखिर में सुन लेते हैं प्रमुख समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। भारत प्रशासित कश्मीर में चरमपंथी बुरहान वानी की मौत के बाद शुरू हुए हिंसक प्रदर्शन आज भी जारी। शुक्रवार से अब तक 18 लोगों की मौत हो गई है और करीब 200 लोग घायल हैं। अमेरिका में पुलिस फायरिंग में काले लोगों की मौत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे। सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा समेत कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। लुइसियाना में ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान से जुड़े एक प्रमुख कार्यकर्ता को हिरासत में लिया गया। बांग्लादेश सरकार ने विवादास्पद इस्लामिक उपदेशक नायक के टीवी चैनल पीस टीवी पर रोक लगाई है। दक्षिण सूडान के उपराष्ट्रपति रेक माचर के सैनिक प्रवक्ता ने कहा कि उनके और राष्ट्रपति साल्वा कीर के समर्थक सैनिकों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो गई है। 3 दिन की लड़ाई में सैकड़ों सैनिकों की मौत हो चुकी है। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुनाया हरिता कांडपाल ने और आज स्टूडियो संभाल रहे हैं दीपक जसरोटिया। आपसे डेढ़ घंटे बाद घटनाचक्र में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक खबरें देखनी है तो आइए bbchindi.com पर। सभी साथियों के संग निखिल रंजन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।